हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहां हजारों कहानियां हैं आपके लिए। थोड़ी देर पहले वेद और शिवांशा के बीच एक छोटा सा मोमेंट क्रिएट हुआ, जिसमें शिवांशा वेद को लगभग किस करने ही वाली थी कि वेद ने सही वक्त पर उसे रोक लिया। वेद और शिवांशा दोनों ही अपने अपने बिस्तर पर थे। शिवांशा ने शर्मिंदगी से खुद को ब्लैंकेट में लपेट रखा था, तो वहीं वेद भी बेचैनी से करवट बदल रहा था। कुछ देर बाद जब वेद ने शिवांशा के खर्राटों की हल्की आवाज सुनी तो वो उठकर बैठ गया। उसने सिर हिलाकर तंज भरे लहजे में कहा, मेरी नींदें खराब करके खुद चैन से सो रही है। मतलब क्या इसे जरा सा भी एहसास है कि ये क्या करने जा रही थी? बेवकूफ नरकी, बिना सोचे समझे कुछ भी करने लगती है। शिवांशा के सोने के बाद वेद उस पर अपनी भड़ास निकाल रहा था, पर सामने से कोई जवाब न आने पर वो चिढ़कर वापस लेट गया। मुझे इससे बात करनी है। पर क्यों? वेद ने मन ही मन बड़बड़ाकर कहा। वेद को खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे शिवांशा से क्यों और क्या बात करनी है। बस वो उसका चेहरा देखना चाहता था, लेकिन शिवांशा के सो जाने के बाद ये पॉसिबल नहीं था। वेद जब भी सोने की कोशिश करता तो उसकी आंखों के सामने शिवांशा का चेहरा घूमने लगता। इसी कश्मकश के साथ आधी अधूरी नींद लेकर वेद सुबह तय वक्त पर उठ गया था। हमेशा की तरह शिवांशा अभी भी सोई हुई थी। वेद ने उसे देखकर सिर हिलाया और फिर जिम एरिया में चला गया था। कुछ ही देर में पूरी चौहान फैमिली ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल पर थी। वे बस वेद के आने का ही इंतजार कर रहे थे। वेद किसी से कॉल पर बात करते हुए नीचे आ रहा था। उसने धीरे से कहा, ठीक है, बाकी का आप देख लीजिएगा। ही इज वेरी टैलेंटेड, बस बिहेवियर थोड़ा चाइल्डिश है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। मुझे यकीन है कि आप उसके टैलेंट और पोटेंशियल को समझकर उसे डिसिप्लिन सिखा पाएंगी। वेद को कॉल पर बात करते देखा अक्षत ने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, क्या लगता है भाई का मूड कैसा है? उम्मीद है कि रात को जो हुआ था वो भाई भूल गए होंगे। हाँ, उम्मीद तो यही है, बाकी गलती की है तो डांट सुनने के लिए तैयार रहना, आराध्या ने कंधे उठाकर कहा। नव्यांशी ने उसे देखकर लाचारी से सिर हिलाया। वो धीरे से बोली, क्या लगता है शिवांशा भाभी ने उनके गुस्से को संभाल लिया होगा क्या? कई बार वंश भैया भी किसी चीज को लेकर गुस्सा करने लगते हैं, तब आप उन्हें समझाते हैं। वंश भैया आपकी बात मानते भी हैं। क्या वंश भैया की तरह वेद भैया भी शिवांशा भाभी की सुनते होंगे क्या? कुछ कह नहीं सकते, भाभी काफी इनोसेंट और डिसेंसी हैं। उन्हें देखकर लगता नहीं कि किसी चीज को लेकर जिद करती होंगी या भाई पर उन्होंने कभी गुस्सा किया होगा, आराध्या ने जवाब दिया। वे तीनों वेद के चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उनका उतरा हुआ चेहरा और ये उल्टी सीधी हरकतें देखकर वंश हल्का सा हंस पड़ा था। उसकी इस हरकत पर आराध्या ने उसकी तरफ घूर कर देखा और उसके कंधे पर हल्का सा मारा। तुम सब लोग ये डांट सुनना डिजर्व करते हो। मैं तो कहता हूं कि डांटने के साथ साथ भाई को तुम लोगों को ऐसी पनिशमेंट देनी चाहिए जिसके बाद ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचो, वंश ने मुंह बनाकर कहा। वे लोग आपस में फुसफुसा कर बातें कर रहे थे। इस बीच वेद नीचे पहुंच गया था। रात को ठीक से न सो पाने की वजह से वेद का बर्ताव काफी चिड़चिड़ा सा हो रखा था। उसकी आंखों में हल्की लालिमा थी, जिसे देखते ही आराध्या, नव्यांशी और अक्षत ने तुरंत अपनी नजरें नीचे कर ली थी। गुड मॉर्निंग भाई, अक्षत ने हल्का मुस्कुराकर कहा। अक्षत अपनी तरफ से चेक कर रहा था कि वेद का मूड आखिर कैसा है, लेकिन वेद ने जब उसकी तरफ घूर कर देखा तो अक्षत का सिर भी झुक गया था। अक्षत ने मुंह बनाकर नव्यांशी और आराध्या की तरफ तिरछी निगाहों से देखा और मन ही मन कहा, लगता है शिवांशा भाभी भाई का गुस्सा नहीं कम कर पाई, उल्टा ये तो और ज्यादा नाराज लग रहे हैं। चलो, खुद को क्लास लेने के लिए तैयार कर लेता हूं। अक्षत ने गहरी सांस ली और अपनी चेयर पर बैठ गया था। नाश्ते के दौरान वेद ने किसी से कुछ नहीं कहा। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से किसी का मूड खराब हो और उनका खाना बीच में छूटे, लेकिन जैसे ही ब्रेकफास्ट खत्म हुआ वेद ने सख्त चेहरे के साथ उन सबकी तरफ देखा। तो तुम लोगों को लगता है कि मैं तुम लोगों की इंडिपेंडेंस के बीच में आ रहा हूं? वेद ने भौंहें उठाकर पूछा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, आपने कभी हमें किसी चीज के लिए नहीं रोका, नव्यांशी ने सफाई दी। हालांकि वेद की तरफ देखते हुए भी वो हड़बड़ा रही थी। कल रात तुम लोगों ने जो हरकत की उसे देखकर लगता तो नहीं, पूछना या बताना तो दूर की बात है, तुम लोगों का प्लान यही था कि मुझे भनक तक ना हो। वेद ने सिर हिलाया और फिर अक्षत की तरफ देखा। उसने आगे कहा, लगता है तुम्हें जासूसी करने का कुछ ज्यादा ही शौक चढ़ा है। ऑफिस में काम करने के बजाय ये ध्यान रख रहे थे कि मेरा शेड्यूल क्या है और मैं कब फ्री होकर घर जाऊंगा, ताकि तुम इन्हें इन्फॉर्म कर सको। गलती हो गई भाई, आई एम रियली सॉरी, अक्षत ने हड़बड़ाकर कहा। गलती तुमसे नहीं, मुझसे हुई है, जो तुम्हारी बात मानकर तुम्हें हमारी ही कंपनी में इंटर्नशिप करने की परमिशन दी। मैंने मिस बंसल से बात कर ली है, तुम इंटर्नशिप के लिए वहां ज्वाइन करने वाले हो, वो भी आज ही, वेद ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा। नहीं भाई प्लीज, आगे से नहीं होगा, आप जानते हैं वो कितनी स्ट्रिक्ट है, मैं वहां 2 दिन भी नहीं टिक पाऊंगा। आई प्रॉमिस, आगे से ये लोग कुछ गलत करेंगे तो सीधा आकर आपको बताऊंगा, अक्षत ने प्लीडिंग वॉइस में कहा। वेद का फैसला सुनकर वे सब चौंक गए थे। वे जानते थे कि वेद रात वाली हरकत के लिए उन्हें डांटने वाला है, लेकिन वो इतना कड़ा फैसला लेगा इसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। मुझे बहाने नहीं सुनने हैं, मैंने मिस बंसल से ऑलरेडी बात कर ली है, तुम्हारी कुकिंग क्लासेस के लिए वो तुम्हें 2 घंटे पहले फ्री कर देगी, तो उसके लिए तुम्हें टाइम मिल जाएगा, अपना रिज्यूमे लेकर अगले 1 घंटे में वहां पहुंच जाना, वेद ने जवाब दिया। अक्षत का गिड़गिड़ाना उसके कोई काम नहीं आया। अक्षत ने बेचारों सा मुंह बनाया और लाचारी से कहा, ठीक है भाई। उसके बाद उसने नव्यांशी की तरफ घूर कर देखा।
अगर आज अक्षत को सजा मिल रही थी तो उसकी वजह नव्यांशी थी। उसने नव्यांशी को समझाया भी बहुत था, लेकिन उसने उसकी एक नहीं सुनी थी। अक्षत ने गहरी सांस ली और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आपकी हर सजा और डांट मंजूर है भाई, लेकिन गलती अकेले मेरी नहीं थी। इन दोनों को भी सजा दीजिए और साथ में शिवांशा भाभी को भी। सारा प्लान इन तीनों लड़कियों का था, बोलते हुए अक्षत ने उन दोनों की तरफ इशारा किया। आगे क्या करना है वो भी बता देना। वेद ने अक्षत को डांटा तो वो चुप हो गया था। उसके बाद वेद ने नव्यांशी और आराध्या की तरफ देखा और कहा, नव्यांशी, मैंने तुम्हें मैच्योर समझा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तुम कुछ ज्यादा ही इमैच्योर हरकतें नहीं कर रही। तुम्हारी सजा यह है कि मैं अब डायरेक्ट तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। इन्वेस्टर खुद ढूंढो और आगे की रिसर्च के लिए आज शाम ही तुम दिल्ली जा रही हो। लेकिन भाई, मैं कहाँ से इन्वेस्टर्स लेकर आऊंगी? नए प्रोजेक्ट में जल्दी से कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। ऊपर से सब जानते हैं कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। सबका सवाल यही होगा कि आखिर आप मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे, नव्यांशी बोली। ये तो तुम्हारा काम है ना कि तुम उन्हें कैसे कन्विंस करती हो, वेद भय उठाकर बोला। भाई, आपको नहीं लगता कि आप हमें कुछ ज्यादा ही बड़ी सजा दे रहे हैं? ठीक है, हमसे गलती हो गई और आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे, और वैसे भी इतनी भी बड़ी गलती नहीं थी, हम बस एक कॉन्सर्ट में ही तो गए थे, नव्यांशी ने सख्त आवाज में कहा। हालांकि वेद के सामने बोलते हुए उसकी नजरें नीचे थी और आवाज धीमी। गलतियां तो उन लोगों ने पहले भी की थी, लेकिन वेद ने कभी उनके साथ इतनी सख्ती नहीं दिखाई थी। सिर्फ नव्यांशी ही थी जो इस तरह वेद के सामने सवाल पूछने की हिम्मत कर सकती थी।
लगता है आज तो छोटी हिटलर गई, अक्षत ने छोटी सी तिरछी मुस्कुराहट के साथ मन ही मन कहा। उन सबको यही लग रहा था कि नव्यांशी के इस तरह गलती करने के बाद भी सामने से सवाल करने पर वेद गुस्सा होगा, पर उसे कुछ कहने के बजाय वेद ने अपना मोबाइल निकाला। खुद नव्यांशी भी हैरानी से वेद की तरफ देखने लगी। कुछ मिनटों बाद वेद ने मोबाइल स्क्रीन नव्यांशी की तरफ की और धीमी सख्त आवाज में कहा, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी गलती इतनी भी बड़ी नहीं थी? मैं यहां तुम लोगों को इसलिए इतनी बड़ी सजा नहीं दे रहा हूं क्योंकि तुम लोगों ने मेरी मर्जी के खिलाफ किसी कॉन्सर्ट को अटेंड किया है। सबसे पहले मैं तुम सबकी गलतफहमी दूर कर देता हूं। अगर वो कॉन्सर्ट नॉर्मल होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। शुक्र मनाओ सही वक्त पर वहां से निकल गए थे, वरना जो भी कॉन्सर्ट में मौजूद थे वे इस वक्त पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट के लिए ले जाए जा रहे हैं। वो कोई नॉर्मल कॉन्सर्ट नहीं था, वहां कॉन्सर्ट के बहाने ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग का काम हो रहा था। दूसरी बात, अगर तुम लोगों को तुम्हारा काम सजा लगता है तो आई थिंक वो तुम्हें छोड़ देना चाहिए। मेरा फोकस हमेशा से तुम लोगों का फ्यूचर सेट करने में रहा है। तुम लोगों को बिगड़ना है तो बेशक बिगड़ो। सॉरी भाई, नव्यांशी ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखें हल्की नम हो गई थीं। वेद की डांट और उसकी सजा सख्त जरूर होती थी, लेकिन उसके पीछे का इरादा हमेशा उनकी भलाई ही रहा था। ये बात वे सब अच्छे से समझते थे। अक्षत और नव्यांशी के बाद वेद ने आराध्या का रुख किया और कहा, कब तक छोटी छोटी वर्कशॉप्स चलाती रहोगी? आई नो अकेले तुम्हारे लिए घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना मुश्किल होता है। अगर तुम्हें इस चीज में दिक्कत आ रही है तो तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिवांशा को दो और पूरी तरह से बिजनेस ज्वाइन कर लो। लेकिन शिवांशा भाभी कैसे संभाल पाएंगी? वो नई है और उम्र में काफी छोटी भी। वो तो अभी तक नींद से भी नहीं उठी हैं, जबकि पूरा घर ऑफिस जाने के लिए तैयार है, आराध्या ने हिचकिचाते हुए कहा। अगर नहीं आता तो सीख जाएगी। उसे इस घर में आए हुए 3 महीने हो गए हैं। अगर अब भी वो यहां हमारे हिसाब से सेटल होना नहीं सीख पाई है तो इसमें हमारी ही गलती है। उसे भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। आज वर्कशॉप्स एक्सप्लोर करने के बजाय वंश के साथ ऑफिस जाओ और वर्कशॉप से जुड़े हुए सभी प्रोजेक्ट को अब से तुम हैंडल करोगी, वेद ने ठंडे लहजे में कहा। उन सब ने वेद की बात पर हामी भरी और अपने अपने काम पर निकलने के लिए तैयार थे। वेद ने उनके साथ जाने के बजाय वंश से कहा, वंश, हो सकता है कि मुझे आने में थोड़ी देर हो जाए, तुम हैंडल कर लेना। वंश ने सिर हिलाया और आराध्या के साथ ऑफिस जाने लगा। बाहर जाते हुए वो आराध्या से धीमी आवाज में बोला, लगता है अब शिवांशा भाभी की बारी है। पता नहीं भाई उन्हें क्या सजा देंगे। ऊपर से हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करने के लिए पास में मौजूद थे, वो तो अकेली रह जाएगी, आराध्या ने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर अक्षत जल्दी से उसके पास आते हुए बोला, कभी कभी मुझे शिवांशा भाभी पर बहुत दया आती है। ऐसा लगता है जैसे किसी मासूम सी प्रिंसेस की शादी फेरी टेल के राक्षस के साथ हो गई हो। शर्म नहीं आती तुम्हें हमारे भाई को राक्षस कहते हुए? नव्यांशी ने अक्षत को हल्का सा मारते हुए कहा। शर्म तो आपको ये कहते हुए भी नहीं आई थी कि हमारी गलती इतनी भी बड़ी नहीं थी, अक्षत हंसते हुए बोला और नव्यांशी का मजाक उड़ाने लगा। वे चारों वहां से अपने अपने काम के लिए निकल गए थे तो वहीं वेद सख्त चेहरे के साथ ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था। उसने ऊपर जाते हुए मन ही मन बड़बड़ा कर कहा, मैं भी देखता हूं कि तुम कितने बजे तक और कितनी देर तक सोती हो। वेद अपने कदम कमरे की तरफ बढ़ा रहा था। वो यहां सिर्फ ये देखने के लिए नहीं रुका था कि शिवांशा कितनी देर तक सोती है। अगर सजा उसके भाई बहनों को मिली थी तो गलती तो शिवांशा से भी हुई थी और वो इससे कैसे बच सकती थी। वेद ने शिवांशा के लिए भी उसके हिसाब से परफेक्ट पनिशमेंट सोच रखी थी, बस उसे इंतजार था तो शिवांशा के उठने का।